ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतं हेत दुर्लभम्। अहो अति अद्भुतं येतत्। अहो अति अद्भुतं येतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि। वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ति चेद्यस्य विद्विष। अहो अत्यद्भुतं ह्येतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि। वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ति चेद्यस्य विद्विष। अहो अत्यद्भुतं ह्येतत् दुर्लभ एकान्तिनामपि। वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ति चेद्यस्य विद्विष। एक प्रभु जी आवृत्ति कीजिए और एक माता जी। श्री युधिष्ठिर उवाच, दुर्लभ एकान्तिनामपि। वैष्णवी श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतम् एतत् दुर्लभे कान्तिनामपि। वासुदेवे परे तत्त्वे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ ध्यान से सुनिए। श्री युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहो ओह अति अद्भुतम अत्यंत अद्भुत ही निश्चय ही एतत यह दुर्लभ प्राप्त करने में कठिन एकांति नाम अध्यात्मवादियों के लिए अपि भी वासुदेवे वासुदेव में परे परमः तत्त्वे परम सत्य प्राप्ति प्राप्ति चेद्यस्य शिशुपाल की विद्विष ईर्ष्यालु। अभी यहाँ पे हमने 16 नंबर श्लोक का आवृत्ति किया है, लेकिन आज का जो क्रमांक है श्लोक संख्या 13 से लेकर के 16 तक, तो बीच में परपट नहीं है, इसलिए हमने इसकी आवृत्ति करी है। तो मैं 13 से 15 तक पढ़ूंगा और 16वां में हम लोगों ने आवृत्ति कर लिया है। तब हम अनुवाद पढ़ते हैं इस 16 नंबर का। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त, फिर भी भगवान से ईर्ष्या करने मात्र से उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सदगति प्राप्त हुई। निश्चय ही यह आश्चर्यजनक था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमयी कृपा का कारण पूछा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणीं परमानन्द माधवम् श्री चैतन्येश्वरम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं कृपा की याचना करता हूँ आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी के चरणारविंद में करबद्ध प्रार्थना करते हुए मुझ अधम पतित पे कृपा कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसको बोलने के लिए आप सब भक्तों की ही कृपा का अवलंबन है मुझे, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है जो श्रीमद् भागवतम का बोलने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सब वैष्णवजन मुझे कृपा कीजिए ताकि हम गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को आप सब भक्तों के भक्ति के संवर्धन के लिए हम आचार्यों की वाणी को साधु गुरु सम्मत जो शास्त्र की वाणी है ऐसे ही वाणी का प्रयोग हमारे मुख से हो। हरे कृष्णा। तो 13 नंबर श्लोक है, अत्रैवोदाहृत पूर्वम इतिहास सुर ऋषिना प्रीत्या महाक्रतो राजन् प्रिक्षते अजात सत्रवे। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजस्वीय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों का वध करते समय भी इतने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। तात्पर्य इस श्लोक में से महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजसीय यज्ञ की स्थली पर जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तब भी वे कितने निष्पक्ष थे इसका पता चलता है। 14 और 15, दृष्ट्वा महा अद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतो वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदिभुज तत्रासीनम सुरऋषिम राजा पांडुसुत क्रतो पप्रच्छ विस्मित मना मुनिनाम श्रृण्वतामिदम्। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को परम भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा, अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर चरित्र का गान यहाँ पे किया जा रहा है। गत कई दिनों से आप सब भक्त यहाँ पे भगवान के समदर्शिता होने के लिए कई सारे पक्ष जो सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पे दे रहे हैं श्री परीक्षित महाराज को, क्योंकि भगवान पे एक क्वेश्चन उठाया गया था जो भगवान पक्षपात करते हैं। इस प्रश्न इस जो चैप्टर के शुरुआत में भी ये प्रश्न किया गया है जो भगवान जो है पक्षपात करते हैं। इंद्रिय जो इंद्र का जो शत्रु है ना उसको मारने के लिए भगवान विष्णु उनके दल में शामिल हो जाते हैं और जो असुर हैं उनकी हत्या करते हैं। यह पक्षपात असुर के तरफ से लगाया गया था। तो इसी का निराकरण यहां पे इस चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, इसलिए इसका शीर्षक ही रखा गया है समदर्शी भगवान। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते किसी के साथ, वो हमेशा समदर्शी होते हैं। तो इसलिए इसका निराकरण इस श्लोक में होगा, कई सारे श्लोकों में हो चुका है। तो यहां पर मैं शिशुपाल जो 13 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़े हैं जो एक जो है पूर्व के इतिहास का वर्णन किया गया है जो यहां पर मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से दिया गया है शिशुपाल जी के जीवन का चरित्र। ये राजसूय यज्ञ चल रहा था उसी की ये सारी जो घटना है सारा का सारा। पांडु महाराज जो पांडु के पुत्र हैं पांडवगण युधिष्ठिर महाराज की अध्यक्षता में राज्य कर रहे हैं। देखा जाए तो एक्चुअल में युधिष्ठिर महाराज को जो राज्य है ना वो कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं और यही होना चाहिए। हम भगवान को अपने जीवन में अपने जीवन के में भगवान को केंद्र में बना करके भगवान को निमित्त रख करके ही कोई कार्य को संपादित कर सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए कोई काम करते हैं ना तो इसी से हम फंस जाते हैं। मेन उद्देश्य होना चाहिए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, यही भक्ति है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के अनन्यतम भक्तों में से एक हैं, वो यहाँ पे राज्य कर रहे हैं और बता रहे हैं। ये सातवें स्कंद में टोटल जितने भी अध्याय हैं, 15 अध्याय होगा शायद, 15 अध्याय है, तो इसमें 15 अध्याय में सारा का सारा भगवान नारद जी ही बोल रहे हैं। ये नारद जी के जो वार्तालाप है उस रिकॉर्डिंग को सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को बता रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि डायरेक्ट अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। नारद मुनि क्या बोले इस प्रश्न के उत्तर में, उसी को रिले कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं जो शिशुपाल राजसूय यज्ञ में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर जो है नारद जी दे रहे हैं। तो बता रहे हैं शिशुपाल के जन्म समय में, देखिए शिशुपाल की कुछ हिस्ट्री बताता हूं। शिशुपाल जी का जब जन्म हुआ ना, तो उनको 3 आंख था, 3 आंख और 4 हाथ। तो ये बड़ा ही अद्भुत बालक पैदा हुआ शिशुपाल जी, तो ये दिखने में भी बड़ा कुरूप सा लगता था, 3 आंख और 4 हाथ वाले, क्योंकि मनुष्य तो 2 आंख 2 हाथ वाले होते हैं। तो एक नया विचित्र जीव पैदा हो गया जिसको 3 आंख और 4 हाथ था। तो इसको विभिन्न लोग जो बच्चे को गोदी में लेते हैं, हर कोई जब जन्म लेता है, ऐसे क्रम में करते करते जो ना भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोदी में लिया। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोदी में लिए तो उनका 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गया, और उसी समय में आकाशवाणी हुआ जो इसकी जो है मृत्यु उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के माने द्वारा होगी। तो ये चेदी राज कौन है? चेदी राज शिशुपाल जो चेदी देश के राजा हैं, ये किसके पुत्र हैं? दमघोष के पुत्र हैं, और इसकी माता का नाम है सुत सुभा। वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, उनकी 2 बहन है, एक है कुंती महारानी, एक दूसरी है सुत सुभा। तो सुत सुभा और जो दमघोष के द्वारा जो पुत्र की उत्पत्ति हुई वो कौन हुए? दंतवक्र और शिशुपाल। तो यहां पे शिशुपाल जो जन्म से ही क्या करते थे? भगवान से बैर करते थे। तो हमारे गुरुदेव ही होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, जब से शिशुपाल ने होश संभाला और अपने तूतली भाषा में पहला जो शब्द निकला ना उसके मुंह से, वो भगवान के लिए गाली ही निकला, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जैसे तूतली भाषा में बोलता था लेकिन भगवान को गाली ही देता था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं जो ये शिशुपाल जो ईर्ष्यावश करता है, ईर्ष्या भगवान के साथ बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या भरा हुआ था उनके अंदर में। तो कई रसों में भगवान की भक्ति करते हैं, तो एक भागवतम में श्लोक आता है जो कंस जो है ना भगवान से भयभीत होकर के कृष्णा कॉन्शियस में हमेशा रहता था, और शिशुपाल को भगवान से ईर्ष्या था तो वो हमेशा भगवान के कृष्णा कॉन्शियस में से रहता था। लेकिन ये भक्ति नहीं है। इसको समझने वाली बात है जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए जो फेवरेबल हो उसी को हम भक्ति बोलेंगे। अब शिशुपाल हमेशा 24 आवर भगवान विष्णु की जो ही कॉन्शियसनेस में रहता था। ये बात बड़ा ही उत्तम बात है जो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना, क्योंकि येन केन प्रकारेन मनः कृष्ण निवेशय। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं जो येन केन प्रकारेन, किसी भी तरीके से हमारी अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान के चरणारविंद में फिक्स करना है, इसी को बोलते हैं हम भक्ति। तो यहां पे देखिए येन केन प्रकारेन, शिशुपाल जी अपने मन को भगवान के चरणारविंद में फिक्स तो किए हैं लेकिन द्वेषात दोष के कारण, तो इसलिए जो अनुकूल भाव से ये भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, द्वेष बस भगवान को कॉन्शियसनेस में है, इसलिए हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते शिशुपाल जी का। ऐसे ही कंस है, कंस भय के साथ भगवान विष्णु को हमेशा याद करता था। कंस के बारे में कई सारे कथा है। एक बार नारद जी कंस के दरबार में उपस्थित थे और कंस जो है अपने महल से घर से मान रूम से जो है ना सीढ़ी के रास्ते नीचे आ रहे थे। जब वो नीचे उतर रहे थे कि अपना शैडो अपना प्रतिबिंब कंस ने देखा और उसमें उनको कृष्ण का भान हो गया। तो कृष्ण को जैसे ही देखे अपने प्रतिबिंब में तो तुरंत जो है ना अपना तलवार निकाले और उसको मारने के लिए तत्पर हो गए। तब तक नारद जी बोलते क्या कर रहे हो कंस जी, तो कृष्ण कृष्ण तो उनका कॉन्शियसनेस में इतना भरा हुआ था कृष्ण जो हमेशा वो कृष्ण को देखते थे बट अनुकूल नहीं था। जब कंस अपने घर में हुआ करता था तो जब पर्दा जैसे ये है ना पर्दा भी डोलता था ना तो उसको डर लगता था पर्दा के पीछे कहीं कृष्ण तो नहीं है, तो पर्दा को जाकर के टच करता तो फिर देखता नहीं है तो फिर आश्वस्त होता था। एक बार की बात है ये कंस अपने डाइनिंग टेबल पे अपनी पत्नी के साथ जो है ना भोजन कर रहा था। उसकी पत्नी का नाम क्या है, अस्ति और प्राप्ति, किसकी पुत्री है, जरासंध जी की। कैसे शादी हुआ आप लोगों को पता ही होगा। तो अस्ति और प्राप्ति के साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी जो है खा रहे होंगे। उसी समय में क्या हुआ, कंस इतना कॉन्शियसनेस में था अस्ति और प्राप्ति बैठी हुई है लेकिन उसको भान हुआ कृष्ण बलराम बैठा हुआ है उस। अब लेकिन तलवार लेकर के तो प्रसाद खा नहीं रहा, खाना खा नहीं रहा था, उसे तुरंत खाना छोड़ करके अपने महल में गया, उसे तलवार लेकर के वापस आया, उनको मारने के लिए एकदम तत्पर हो गया। अब तत्पर हो गया तो करे मेरी पत्नी है भाई, इसको तो छोड़ दो, आए पत्नी है तो अस्ति और प्राप्ति। तो इतना कॉन्शियसनेस में था, जब कंस पानी पीता था ना तो पानी में प्रतिबिंब बनता था किसका, कृष्ण का, इतना भयभीत था। तो भयात कंस जो है ना भयवश जो हमें कब ये मार देगा, इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस था जो एक योगी जन साधक भी इतना भगवान को याद नहीं करते थे, 24 आवर्स भगवान में चिंतन में लगा रहते थे। लेकिन ये क्या था, प्रतिकूल भाव से, इसलिए हम इनका अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए माता यशोदा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को क्या किस चीज में बांध करें, कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब से भगवान को एक रिलेशनशिप में भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं माता यशोदा। लेकिन बांधने के बीच में मकसद क्या है, ये जो बालक है ये लोगों के घरों में जाकर के चोरी करता है जिसकी शिकायत इनके पास आता था, तो इनका भाव क्या है माता यशोदा का, जो ये बालक किसी के घर में जाकर के चोरी न करे ताकि भविष्य इसका बिगड़े न, इसलिए भाव अच्छा है भगवान को बांधने का। तो कह रहे हैं डेप्थ और डिवोशन, भगवान को कोई भला बांध नहीं सकता, जो पूरे जगत को त्रिगुणमयी रस्सी से बांध के रखते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो भगवान कहीं किसी के रस्सी में बांध सकते हैं क्या। तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ रोप्स, यानी कि रस्सी की लंबाइयों से, लंबे रस्सी से भगवान को बांधा नहीं जा सकता। भगवान को अगर बांधना है तो भगवान जो है ना डेप्थ और डिवोशन करे, जो भक्ति की जो प्रगाढ़ता है ना, जब प्रेमा भक्ति से ही भगवान को सेवा के माध्यम से ही हम बांध सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो भगवान को हम बांध सकते हैं। इसलिए अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूल भाव से जो भगवान की भक्ति किया जाता है और वो भक्ति में जो फेवरेबल होता है तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर मैं देखते हैं जो क्या कर रहा है हमेशा। एक बार क्या हुआ, जो जब पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन भगवान में है, लगा हुआ है, उस अवस्था में जो भक्ति किया जाता है और भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है, सबसे पहले अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसको अगर हम जान जाएंगे, उसके हिसाब से भक्ति करना बड़ा ही आसान हो जाता है, अब उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए जो ये प्रभु जी यहाँ के प्रधान क्या कहते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे है, तो उनको हम इतना खातिरदारी करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो एक आम आदमी की तरह हम पेश होंगे। तो संबंध जब जान जाते हैं किसी व्यक्ति का तो हमारा भाव में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम होता है भक्ति में, एक साधक को भगवान के साथ अपना संबंध बना लेना चाहिए। भगवान मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और के लिए होंगे भगवान ये हमें नहीं पता या जो भी होंगे, लेकिन ये भगवान किसके हैं, ये मेरे हैं। इसलिए ये संबंध स्थापित करना ये बहुत ही अच्छी बात है भक्ति को प्रतिपादित करने के लिए। तो कई तरह का यहाँ पे, तो इसलिए जब चैंटिंग में क्या होता है, भगवान में हमारा मन एब्जॉर्ब नहीं होता है। हम चैंटिंग करते रहते हैं, अपना माला की संख्या पूरा करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन एब्जॉर्ब नहीं होता। कर एब्जॉर्ब का मतलब होता है मनोनिवेश। कर अपना जो मनोनिवेश है ना, मन जो है ना, भगवान में आवेशित करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध में, भगवान के साथ लीला रूप गुण लीला में अपने मन को जब हम आवेशित करते हैं और उस वक्त में जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस टाइम का जो आनंद होता है वो अलग ही आनंद होता है। हम उस सागर में जो है, आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं। तो भगवान के साथ जो हमारा चैंटिंग के वक्त जो फीलिंग है, विलिंग है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए कह रहे हैं जो लव ऑफ अटेंशन, भगवान के साथ एक अटेंशन के साथ सजग होकर के भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और उसी शब्दों को, दिव्य ध्वनि को जब हम श्रवण करते हैं, तो ये एक चैंटिंग का जो प्रोसेस है, ये दिव्य प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक विधि है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्तिया माम अभिजानाति, केवल और केवल भगवान की भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब कह रहे हैं हमारा जो हैप्पीनेस है ना, हमारा जो खुशी है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, फीलिंग, हमारा कॉन्शियसनेस क्या है भगवान के लिए, ये इस पे डिपेंड करता है हमारा भगवान के साथ। हमें माने भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, हमारा भाव क्या है, इस पे हमारी भक्ति डिपेंड करता है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रखा गया है, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत माने भावना जो है ना, भाव जो है ना, भगवान के प्रति हमारा अनुकूल होना चाहिए। इसलिए फीलिंग जो है, यानी कि कॉन्शियसनेस है, जो एकदम डेप्थ होना चाहिए, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, हम लोग दास्य भक्ति रस में भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो जब हमारा फीलिंग सही डायरेक्शन पे होता है तो वो भगवान की भक्ति प्रगाढ़ होकर के, भगवत भक्ति को प्राप्त करके हम भगवान को, भगवान के लोक को जाते हैं। लेकिन भक्ति लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हमारा कॉन्शियसनेस में विक्षेप होता है, कॉन्शियसनेस हमारा सही नहीं होता है, तो हम भक्ति बरसों बरसों तक करते रहते हैं लेकिन हमारी उन्नति नहीं होती भक्ति में, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस बड़ा गंदा है। इसलिए कॉन्शियसनेस को सुधारने का जो प्रोसेस दिया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने से ही हमारा जो है चेतो माने हमारा जो हृदय में मलिनता छाई हुई है ना, उसको हटाया जा सकता है। इसका इलाज यही है, भगवान का नाम ही लेना। बीमारी औषधि जो है, औषधि बीमारी का औषधि भगवान के नाम लेना है। भगवान का नाम जितना बढ़िया से लेंगे उतनी बढ़िया हमारा प्रोग्रेस होगा भक्ति में। यहां पे श्रील प्रभुपाद जी परपट में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों का वर्णन है। इसमें पहला दिया है ज्ञानी और दूसरा दे रहे हैं भक्त। तो ज्ञानी के बारे में, तो ज्ञानी, कर्मी और भक्त, ये तीन तरह के लोग होते हैं। तो कर्मी के बारे में बताता हूं, कर्मी क्या होता है, सेपरेट डिजायर, भगवान को साइड में रख करके एक सेपरेट डिजायर होता है किसी व्यक्ति का, और उसमें जब इंजॉय आनंद लेने का प्रयास करता है, इसी को कर्मी बोलते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज, कोई भी काम करता है उसका, उसको रिजल्टेंट, उसका रिटर्न चाहिए। सकाम कर्मी जो लोग होते हैं, कर्मी, उसको बोलते हैं सेपरेट, भगवान को साइड में रख करके जब हम इंजॉय करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये कर्मी लोगों की होती है। और कर्मी लोग कहां ज्यादातर जाता है? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक। कर्मी लोगों का जो गंतव्य स्थान है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा भक्ति कर लेगा स्वर्ग, तो स्वर्ग लोक तक जाएगा। अब होता है दूसरा है ज्ञानी, ज्ञानी की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। तो ज्ञानी बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त माने जाते हैं। भक्त मतलब भक्ति नहीं, लेकिन ज्ञानी का क्या होता है टेंडेंसी, भगवान में मिलकर के इंजॉय करना चाहते हैं। भगवान जैसे ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, ये ज्ञानी का मेन उद्देश्य होता है। ज्ञानी भगवान को किस तरह से देखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं अध्यात्मवादी भगवान को अव्यक्त, निराकार, निराकार देखते हैं, अव्यक्त देखते हैं, और स्वरूप में, भगवान का स्वरूप में नहीं देखते। भगवान का एक निश्चित स्वरूप है, वो अध्यात्मवादी का जो ये ज्ञानी लोग है ना, ये भगवान के स्वरूप की पूजा नहीं करते, वो निराकारवाद की पूजा करते हैं। इसलिए वो निराकार यानी कि भगवान में अपने आप को विलीन कर लेना चाहते हैं। तो कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं, भागवतम के परपट में, जो अपनी सत्ता को विलीन करना, अपनी सत्ता को खोना, यानी कि कोई अपनी सत्ता भगवान में जाकर के मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपनी सत्ता गायब हो गया। जब सत्ता गायब हो गया तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। लेकिन एक भक्त का क्या होता है टेंडेंसी, भक्त चाहता है भगवान में जाकर के भगवान की चरणारविंद में अपने मन ध्यान को फिक्स करना और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। यहां पे कौन है, भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी ऐसा चाहते हैं। हमेशा भक्तगण भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, न कि भगवान में लीन होना चाहते हैं। और भगवान में लीन होना, ये जो ब्रह्म सुख होता है, ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही आनंददायक सुख होता है, मोक्ष प्राप्त करना जो भगवान में लीन हो गया। लेकिन ये उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा वो आनंददायक होता है जब भगवान के चरणारविंद में फिक्स होकर के भगवान की हम सेवा करते हैं। इसमें हमारी सत्ता बनी रहती है, इसमें आनंद का जो रेशियो है ना, वो कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा कभी भी भगवान में मिलकर के नहीं, भगवान के चरणारविंद में अपने आप को लगा करके भक्ति करते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। यही एक भक्त का यहां पे लक्ष्य होता है। तो यहां पे एक जो इतिहास बता रहे हैं नारद जी, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध जो है भगवान क्यों किए, तो इसमें एक पुराना इतिहास बता रहे हैं। जो सनकादि ऋषि जब बैकुंठ को जा रहे थे, तो जय विजय ने उनको रोक दिया सातवें दरवाजे पे। छह दरवाजा तो सनकादि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो बैकुंठ में जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। तो उनको जय विजय जो वहां के द्वारपाल हैं, भगवान के जो निजी पार्षद हैं, वो उनको रोक दिए, क्योंकि ये सनकादि ऋषि अपने उम्र को 5 वर्ष करके जो सबसे चिर्स, जब जो सबसे पुराने जो व्यक्ति हैं इस धराधाम पे, ये सनकादि ऋषि हैं, लेकिन अपने उम्र को फिक्स किए हैं 5 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में उनके मन में छल प्रबंध नहीं होगा, पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस भगवान में लगेगा, इस तरह का हमेशा उम्र बनाए रखते हैं। तो इस बच्चे को नंग धरंग को देख करके जय विजय ये नहीं कैलकुलेट कर, माने दिमाग में डिटरमाइन कर पाए जो ये व्यक्ति कौन हो सकता है, उन्होंने तुरंत रोक दिया, भाई आपके लिए जो है इधर जाना अलाउ नहीं है। अब अलाउ नहीं है तो सनकादि ऋषि ने तुरंत जो है ये भगवान की प्लानिंग के साथ उन्होंने उनको कहा, भाई आप तो यहाँ के अधिकारी नहीं हो, आपको जाना पड़ेगा मर्त्यलोक, क्योंकि मर्त्यलोक में ईर्ष्या द्वेष की ये भावना होती है, जो आप मुझे भगवान से मिलने से रोक रहे हो हमारी स्वरूप को, इसलिए उनको आना पड़ा। तो ये जो शिशुपाल, दंत वक्र, रावण, कुंभकर्ण और जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और कलयुग में बोलते हैं जगाई और मधाई, तो ये कौन है? जय और विजय। जय विजय का उद्धार करने के लिए ही भगवान अपने पार्षदों पे विशेष कृपा करने के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को इस धरती पर से ले जाने के लिए, आसुरी योनि से मुक्त करने के लिए उनको कृपा करने के लिए आए थे। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। निजी स्वार्थ यही था जो हमारा पार्षद है उनको अपने धाम में ले जाएंगे, लेकिन इंद्र की चालाकी इसमें नहीं था। लेकिन असुरगण को ऐसा लगा जो ये जो शिशुपाल है, ये जो शिशुपाल यहां पे जो क्यों वध किए, तो भगवान की एक विशेष कृपा के कारण इन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को वध किए और अपने धाम में ले गए। लेकिन यहां पे शिशुपाल जो भगवान को जब 100 गाली दे, राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल एक से एक गाली दे रहे थे, तो इस इतिहास को बता रहे हैं नारद जी, अब बोल रहे हैं जो जब इतना गाली दे रहे थे, जब 100वां गाली पूरा हो गया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके शिशुपाल जी का गला का काट दिया। इसका क्या मतलब है? शिशुपाल जी का जब शरीर में गला कटा तो शिशुपाल जी से दिव्य आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में आकर के विलीन हो गया। इस घटना जो ये अद्भुत घटना यहां पे लिखा है ना, अद्भुत घटना, ये जो अद्भुत घटना है ना, ये राजसीय यज्ञ में जो घटा, इसको देख करके सारे ऋषिगण, वहीं पे नारद जी उपस्थित थे, सारे ऋषिगण उपस्थित थे, इसको देख करके ये प्रश्न पूछते हैं जो ये शिशुपाल जो हमेशा भगवान के साथ द्वेष करता था, वो भगवान की जो सायुज्य मुक्ति को कैसे प्राप्त कर लिया, जो भगवान में कैसे, जो सायुज्य मुक्ति जो बड़े बड़े योगी साधक को भी नहीं मिलता, वो शिशुपाल जो भगवान के साथ हमेशा द्वेष करता था, भगवान को गाली दिया है, वो सायुज्य मुक्ति को कैसे प्राप्त कर लिया। इस बात को देख करके बड़ा इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए युधिष्ठिर महाराज यहां पे प्रश्न पूछे हैं नारद जी से जो ये भला कैसे हुआ। तो ये पुराना इतिहास नारद जी ने इनको बताया, जो नारद जी ये पूरा इतिहास बताने पे उनको ये बात पता चला। इसलिए इतने 20 साल 25 साल जो भगवान के भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन कारण है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। भाव भगवान के साथ जो फिक्स होना चाहिए, किस भाव से हमें भक्ति करना चाहिए, ये ठीक नहीं बैठने से हम भक्ति में आगे पदोन्नति नहीं कर पाते हैं। और किसी वैष्णवों के प्रति जब हमारे से अपराध होता है और हमारा कॉन्शियसनेस रॉन्ग होता है, तो हम भगवान की भक्ति को रिलीज नहीं कर पाते, आनंद नहीं ले पाते। अगर मान लीजिए खीर बना है और बहुत सुंदर खीर बना, सब चीज डाला है, मेवा, काजू, किशमिश, लेकिन कोई इसमें थोड़ा सा 2 बूंद मिट्टी तेल डाल दे, तो ये जो मिट्टी तेल है ना, उस खीर के आनंद को पूरा खत्म कर देगा। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ना, हमें मिट्टी तेल को साइड में रखना पड़ेगा। हमारे जो कचरे हैं ना, मन के जो भाव है ना, गलत जो विचार है ना, उसको साइड में रख के भगवान के साथ भाव फिक्स, क्योंकि भगवान कौन है? भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भाव हमारा लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के, हमारी जो पूरी की पूरी भक्ति कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है, और कॉन्शियसनेस हमारा शुद्ध होता है चैंटिंग के बल पे। चैंटिंग जिसका जितना अच्छा होता है ना, वो उतना ज्यादा जो है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर पाता है। इसलिए ज्ञान योग जो है, देखिए ज्ञानी, यहां पे 2 तरह की चर्चा है ना, ज्ञानी और भक्ति योगी। ज्ञानी भगवान के लोक को जाता है और भक्ति योगी भाई भगवान के लोक को जाता है, लेकिन दोनों प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। ज्ञानी जो ज्ञानी योग का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा ही कष्टकारक प्रोसेस होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, हमें 20 फ्लोर के बिल्डिंग पे चढ़ाई करना है, जाना है, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो दबाया बटन 20वां फ्लोर और पहुंच गया। तो ये है भक्ति योग का प्रोसेस। लेकिन ये जो ज्ञान योग का प्रोसेस है ना, 20वें फ्लोर पे सीढ़ी के रास्ते से ये भी जाएगा, लेकिन हो सकता है थक जाए, दम फूल करके मर भी जाए, हो सकता है पहुंच भी जाए। तो इसमें गारंटी उतना ज्यादा नहीं रहता। तो ये प्रोसेस जो है लड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, श्रील गुरुदेव विजुअलिनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताए एक बार लेक्चर में, जो भक्ति योग एक ऐसा प्रोसेस है ना, इसमें अगर हम आंख मूंद करके भी भागे ना तो एक्सीडेंट होने की कहीं संभावना नहीं रहती। इसमें एक्सीडेंट कहीं नहीं होता। अगर भक्ति से हम च्युत भी हो जाएंगे ना, तो हमें नौ में भक्ति प्रणश्यति, कौन्ति प्रति जानी नौ में भक्त प्रणश्यति, भगवत गीता 9.31। तो भगवान इसमें बता रहे हैं जो भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। अगर हमने एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, अगर हमने एक घड़ी भी भगवान की भक्ति कर ली ना, तो वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। तो भक्ति योग का एक ऐसा अकाउंट हमारे अंदर खुला हुआ है जिस अकाउंट का कभी कुछ खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा संवर्धन ही होता है। लेकिन आप 1 करोड़ रुपया आप अपने अकाउंट में, भौतिक दुनिया के अकाउंट में रख दो बैंक में, और थोड़े दिन बैठ जाओ घर में, वो 1 करोड़ रुपया कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भक्ति योग कभी भी नाश नहीं होता, भक्ति योग। और भक्ति योग का जो माध्यम है ना, कष्टकारक नहीं होता। ये ज्ञान योग का मार्ग बड़ा ही कष्टकारक होता है। इसमें ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ते हैं, और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझने का पर्द, क्लेश अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही दुखम देहवद भी अवाप्यते। करे जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना बड़ा ही कष्टकारक होता है। ये किसका मार्ग बता रहे हैं? ज्ञानी का मार्ग बता रहे हैं। करें देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना सदैव दुष्कर रहता है। ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, बड़ा ही कष्टकारक मार्ग होता है। लेकिन इसमें पथ मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, लेकिन अत्यंत कष्टकारक होता है। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। देखिए भक्ति योग में क्या है, यहां पे ज्ञान भगवान को निराकार समझ करके कहीं भी ध्यान लगाता उसकी सेवा करते हैं, वो उनका सुटेबल चीज नहीं होता है। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, भगवान के एक साकार रूप, एक फिक्स रूप की सेवा करता है। तो इसलिए ये बड़ा ही सुगम हो जाता है। हम लोग भगवान के अर्चा विग्रह में, हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु जी श्री ईशोपनिषद में पढ़ाए, जो अगर हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है ना, तो हम भगवान को सर्वप्रभु हम कहां देखते हैं, भगवान को हम क्या, हमारे मन में भाव क्या रहते हैं, भगवान कहां है, मंदिर में, भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं, विराजमान है। लेकिन ये भाव जल्दी नहीं आता है जो भगवान हमारे अंदर में है। लेकिन भगवान अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में उपस्थित हैं, तो ये भाव आता है उनको देख करके जो भगवान मंदिर में है। तो दूसरे जगह पे कहां पे दिखता है भगवान हमें, गुरु में। पहले अर्चा विग्रह में दिखना चाहिए, दूसरा गुरु में, तीसरा अपने आत्मा में भगवान को, माने इसमें अनुभव करना चाहिए भगवान हमारे दिल के अंदर में, भगवान हमारे माने अंतरात्मा में बसे हुए हैं, तो भगवान का अनुभव यहां पे करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तुरंत ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन करने के बाद तुरंत अर्चा विग्रह का जो है वर्णन कर दिए, क्योंकि कलयुग में जो हमारा जो भगवान को समझने का जो मेन पॉइंट है ना, वो मंदिर है। भगवान कहाँ उपस्थित है, मंदिर में उपस्थित है। जब हम शुरुआत में भगवान को मंदिर में देखेंगे, तो ये कॉन्सियसनेस डेवलप होते होते फिर गुरु में देखेंगे, फिर अंतरात्मा में देखेंगे, फिर हर जीवात्माओं में हम भगवान को देखेंगे। तो ये डेवलपमेंट भक्ति का एक प्रोसेस है। तो भगवान का ये एक साकार रूप है, भगवान कलयुग में अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं और भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। आप सब भक्त अर्चा विग्रह की बहुत कथा श्रवण किए, साक्षी गोपाल, ऐसे कई सारे कथा हैं जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये सेवा को लेने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में यहां पे उपस्थित है। जैसे मान लीजिए हर रोड के साइड में देखे होंगे एक लाल बक्सा डब्बा रहता है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा निर्धारित एक लाख, उसको क्या बोलते हैं, पत्र पेटिका, पत्र मंजूसा जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप लेटर डालोगे तो 6 से 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर में जहां भी आपको भेजना है उस जगह पे वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड डब्बा है। भगवान का ऑथराइज्ड डब्बा, सॉरी, भगवान का जो ऑथराइज्ड रूप है कौन सा है, अर्चा विग्रह। इसलिए अर्चा विग्रह को जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं और वो हमारे लिए उच्चिष्ट प्रसाद जो पाप मुक्त करके छोड़ देते हैं। तो इसलिए उस जो पेटी बॉक्स में जो लेटर डालने से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता, लेकिन उसी तरह का एक लाल बॉक्स जो अनऑथराइज्ड हो उसमें अगर हम लेटर डालेंगे ना तो वो वर्षों तक वहीं पे पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है जो हमारी साधन भक्ति, भक्ति योग का जो प्रोसेस है ये ऑथराइज्ड डब्बा की तरह है, और उसको प्रोसेस को आगे इसको करने से हम जो है ना सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त कर सकते हैं वो सेवा के माध्यम से। तो निराकार भाव में न रहे, निराकार में भगवान की हम सेवा नहीं कर पाते, इसलिए भगवान का वो आनंद नहीं ले पाते। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रस मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा और मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। ये भक्ति योग का कितना ही आसान तरीका है। निराकार में हम कहां मन लगाएंगे, जब किसी का रूप ही नहीं है भला तो ध्यानी लोग किसका ध्यान करते हैं। ध्यान में हम पहले भी एक बार लेक्चर में बताए थे, जब हम ध्यान ही ध्यान करते थे किसका, निराकार का, जिसका कोई रूप ही नहीं है, गोले का करते हैं, एक प्रकाश के बिंब का करते हैं। तो भाई जिसका कोई रूप ही नहीं है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना मूर्खता है ना भाई। याद तो उसको किया जा सकता है, उस पर सेंट्रलाइज किया जा सकता है अपने माइंड को, जिसका कोई स्वरूप होगा। अब मैं राधा श्याम सुंदर को अभी याद करूं आंख मूंद करके तो राधा श्याम सुंदर का विग्रह हमारे मन में अभी बन रहा है, और जब मैं राधा श्याम सुंदर को कभी देखा ही नहीं रहूंगा तो मैं कितना आंख बूंद कर लूं, पट्टी बांध लूं और क्या कहते हैं कुएं में जाके बैठ जाऊं, सौबरी ऋषि की तरह पानी के अंदर में तपस्या करने बैठ जाऊं, तो क्या हमें राधा श्याम सुंदर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। जिनका स्वरूप है वही दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए भक्ति जीवन में भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करका और भगवान को नमस्कार करके जो है ना मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना, ये भगवान की बड़ा ही सरल विधि से सेवा है। और भगवान की शुद्धतम भक्ति ऐसा करके हम भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जब हम अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, अपने अविचलित भाव से जब भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने चित्त को भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर भगवान का माने ध्यान करते हैं, तो भगवान हमें क्या करते हैं, इस मृत्यु जन्म मृत्यु रूपी संसार भव सागर से उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखे हैं, जो कोई भी तैराकी बड़ा ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन समुद्र में जाकर के अगर तैराकी करेगा ना तो कहीं भी समुद्र को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा तैराकी क्यों ना हो। अगर आपको भवसागर, जो ये समुद्र रूप जो भवसागर है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भवसागर में हम सब जीवात्मा फंसे हुए हैं, इसमें से कौन निकाल सकता है हमें? स्वयं भगवान, भगवान ही निकाल सकते हैं। भगवान के रूप में जो गुरु हैं, प्रतिनिधि हैं, जो गुरु कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर है भगवान का, वही हमें इससे निकाल सकते हैं। तो बराह पुराण में बताया गया है, जो भगवान स्पेशली जो अपने शुद्धतम भक्त को उस भवसागर से, जन्म मृत्यु के रूपी भवसागर से निकालने के लिए आते हैं। कैसे? नयामि परमम स्थानम अर्चिरादि गतिम बिना गरुर अस्कंधम आरोप्य यथेक्षम निवारित। कह रहे हैं वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य निरंतर 24 घंटा जब हम इस नामों का उच्चारण करते हैं, भक्ति योग का प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो भगवान स्वयं गरुड़ पे अस्कंदम आरोप्य, गरुड़ पे सवार होकर के भगवान हमें इस भवसागर से निकालने के लिए स्वयं आ जाते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है। निराकारवादी ज्ञानवादी ध्यानी लोग अष्टांग योग करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये एक साधक को एक भक्ति योगी के प्रोसेस में ये सब नहीं किया जाता है। भगवान स्वयं आते हैं। आप लोग गुरुवाष्टकम का जो गुरुवाष्टकम जो आप लोग भगवान गुरु की जो महिमा को सुबह सुबह गाते हैं, संसार दावानल, उसमें 9 श्लोक है। 9वां श्लोक में बताया गया है, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, जो गुरुवाष्टकम गाने, जो ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवाष्टकम का गायन स्वर के साथ लय के साथ करते हैं, उनको वृंदावन चंद्र, जो कृष्ण चंद्र वृंदावन के जो भगवान हैं, वो स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं। क्योंकि विस्मरण, ये इसलिए गुरुवाष्टकम यानी सुबह सुबह जो पहला काम जो होना चाहिए, लय के साथ और उच्च स्वर में अपने गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ये 8 जो श्लोक है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये लिखे थे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद। और रूप गोस्वामी कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने सारे ग्रंथों को लिखने के लिए व्यास देव के रूप में आते हैं, कभी श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं, कभी रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं, कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आते हैं, कभी अभी अभी वर्तमान आचार्य के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये जो भक्त हैं, जो भगवान के स्पेशल मैसेंजर हैं, इनके मैसेज को भक्ति योग के द्वारा ही हम समझ सकते हैं और गुरु के संरक्षण में नहीं रह करके कर सकते हैं। तो हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब भक्तों को अगर मेरे वाणी से कोई ठेस पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई वैष्णवों का अगर कोई प्रश्न हो, हाँ, तो रूप गोस्वामी ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना किए, कुछ ग्रंथ की रचना वो नहीं कर पाए अपने लीला काल में, तो फिर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बन के आते हैं। जैसे भागवतम की टीका नहीं दिए थे रूप गोस्वामी पाद, तो फिर वो दिए भागवतम के टीका। श्रीधर स्वामी महाराज की जो टीका है, उसी टीका को ज्यादा विस्तारित रूप में लिखे कौन? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। और उनके भाव में पूरा चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है ना, आप श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कहीं भी कमेंट्री पढ़िए, आपको भगवान के भाव आएंगे पूरा, क्योंकि उनके पार्षद है ना वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।